मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है ना, जो जो हमें मिला हुआ है। ऐसा ना कभी यह तो करोड़ों की वादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे पैसे मिल जाता है ना। जैसे हवा है बहुत दुर्लभ है, जब नहीं मिले तो इसकी कदर होती है ना। अभी तो कह रहे क्या हवा का क्या है, तो ऐसी होती है। पानी जहाँ इधर आ रहा है, पानी नहीं मिले फिर पता लगता है। तो जब मिल अभी मिला हुआ, इस बात से कदर नहीं करिए। तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है, कितना दुर्लभ शरीर भी ऐसे ही दे दिया। ज्यादा मिला हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य शरीर की दुर्लभता में कोई कमी। देवता तरसते हैं, पशु पंछी बेचारे सोच भी नहीं सकते हैं। तो दुर्लभ का मतलब यह है कि इसके द्वारा वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त की जा सकती है, जो और किसी योनि में संभव नहीं है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और इस वास्ते इसका निरादर नहीं करें। हाँ, इसको खराब नहीं करना है, है? इसको हाँ रोगी नहीं होने देना है, इसको उल्टा सीधा गड़बड़ नहीं करना है, पूरी देखभाल रखनी है शरीर का पूरा। क्योंकि ये शरीर ही है जिसके द्वारा लौकिक कार्यों में सफलता, परलौकिक कार्यों में सफलता, और वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसके साथ भी इसी मानव शरीर में मेल संभव होता है। तो शरीर को गड़बड़ नहीं होने देना। हाँ, भजन करते हैं बहुत से तरीके। शरीर सही होगा तो ही भजन साधना ध्यान होगा। शरीर सही होगा तभी मन में मजबूती आएगी, दृढ़ता आएगी। सिद्धांत वैसे मान ले यदि कि मन मजबूत है तो शरीर थोड़ा ऐसे तंग करे तो कोई रुकावट नहीं खड़ी कर सकता, सिद्धांत तो ये। लेकिन मन तो चंचल जैसा, बहुत शांत जैसा, डावाडोल जैसा, व्याकुल जैसा, ऐसे ऐसे हो जाता है। मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। तो हम ये आम ऐसे कहेंगे, शरीर को मजबूत बनाओ तो मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। हाँ, मन को मजबूत बनाओ बहुत बढ़िया है, लेकिन मन दृढ़ तभी होगा। मन तो वैसे ज्योति स्वरूप है। यदि वो इंद्रियों से, विषयों से, काम क्रोध लोभ मोह विकारों से पूर्ण मुक्त हो जाए तो मन में जो असीम शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। लेकिन तो इसी साधना की प्रकृति, इसी को उपलब्ध करने के लिए कम से कम शरीर तो सही कर लें। जो जो देखा ही दे रहा है, सब कुछ हमारे सामने है। यदि इसी का निरादर करेंगे, इसी का ख्याल नहीं करेंगे, मन मर्जी से कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, तो मन क्या काबू में आएगा, है? हाँ, तो उसकी हम चर्चा करें। कल भी हमने चर्चा की थी, आकीर्तन अभी कर रहे थे। भगवान की प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन है, साथ ही साथ ये शरीर को स्वस्थ रखने का भी बहुत बड़ा साधन है। इससे हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। हमारे पास कई रोगी भी आ जाते हैं, कहते जी वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमने ताड़ी मार के खूब कीर्तन किया करो, नाचो भगवान के नाम में, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल होता है। तो हाँ, थोड़ी सी तुलना कर लें। इधर जो वो आजकल वो क्या होता है, वो नाचते कूदते हैं, वो हैं नहीं वो कीर्तन जो गाते हैं ना वो आजकल का वो डिस्को क्या होता है, हाँ हाँ वो खूब नाचते कूदते हैं। ठीक है चलो वो लोग कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं करेंगे, गलत को ऐसे नहीं कहेंगे, तुलना करेंगे कीर्तन से, उसकी तुलना करेंगे। तो तुलना में ये आता है, ये भी अब कीर्तन में भी मस्त होते हैं और वो भी मस्त हो रहे हैं, वो कहते हैं जी हम बढ़िया हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हमारे पास एक सज्जन वो तो यहाँ तक कहने लगे, कहते जी आप भजन करके ऐसे ध्यान करके अपने मस्त, हम शराब पी के मस्त हो जाते, फर्क क्या है। हाँ ऐसा भी है। तो शारीरिक दृष्टि पर, शरीर के स्तर पर यदि केवल तुलना करें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर परमात्मा मौजूद है, शरीर के अंदर अखंड शक्ति स्रोत सचमुच वो है, वो परमात्मा जी। नास्तिकों की बातें जरूर है, शराब पी लो तो भी ठीक है, कीर्तन कर लो तो भी आपका भी ठीक है, डिस्को कर लो आप, कीर्तन में कर लो, कोई फर्क नहीं। ये वो नास्तिकों की, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, मतलब जो ये नहीं मानते कि हमारे अंदर कोई ऐसा शक्ति का स्रोत है, अखंड स्रोत है, वो जो नहीं मानते उनके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि हमारे अंदर वो अखंड शक्ति स्रोत परमात्मा जो सारे तीनों लोकों का मालिक है वो भी हमारे साथ अंदर मौजूद है, तो फिर बहुत अंतर पड़ जाए। जो ऐसा मानते हैं, हाँ जो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा के वहाँ ऊपर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये मानते हैं कि मेरे शरीर के अंदर भी है, सबसे नज़दीक परमात्मा, ब्रह्मांडों के पार भी है, सब जगह व्यापक भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे नज़दीक जो रहने का स्थान परमात्मा का, वो मेरे शरीर के अंदर है ना। हाँ छोटा सा प्रश्न हम कर लेते हैं, यदि मेरे अंदर परमात्मा बैठा, घुटने में दर्द क्यों होता है? ठीक है प्रश्न, बिल्कुल सही प्रश्न है। अखंड शक्ति स्रोत आनंद परमात्मा यदि मेरे रोम रोम में शरीर में है तो पेट में क्यों दर्द होता है? हैं? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, हाँ ये तो है घुटना यदि दर्द करता है लेकिन फिर भी चलता तो है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो चलता है। पेट में कुछ ना कुछ दर्द भी करता है लेकिन सुख का साधन भी है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो परमात्मा मौजूद है उससे, जैसे सूर्य है, सूर्य से किरणें, सूर्य की किरणें प्रकाश आता है, कभी बादलों में ढक जाए, बादल आ जाए तो सूर्य का उपस्थिति होने पर भी वो बादलों के कारण पूरा प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी जगह है जिसको हम अपनी भाषा में दशम द्वार कह देते हैं, मेडिकल उसकी भाषा में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मस्तक के अंदर ऐसे छोटा सा बिंदु है। तो वहाँ पर वही परमात्मा पूरा का पूरा मौजूद है। हाँ यदि वहाँ पर हम पहुँच जाएं तो वो तो वहाँ पर तो पूरा का पूरा मौजूद है, लेकिन वहाँ से वो नीचे शरीर में फैलता फैलता क्या वो करो अहम का पर्दा पड़ा, फिर काम करो लोभ मोह विकार के पर्दे पड़े, फिर वो प्राणों की धारा बाहर भी, फिर बात पित्त कफ हुआ, कितने आवरण है वो, इस कारण घुटने में दर्द होता है, इस कारण पेट में विकार। परमात्मा तो है मौजूद, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे दर्द भी करता है लेकिन मेरी मर्जी थोड़ा चलता तो पड़ता है, इसको चला नहीं सकते हैं। हाँ चलो भाई सोफा चले नहीं चलेगा, हाँ ये कुछ तो है। तो जितना है उससे और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चेतना को अंदर ले जाएंगे, यदि वहाँ पर ब्रह्म रंध्र में जहाँ परमात्मा वो तीनों लोकों का मालक पूरा का पूरा जैसा का तैसा, वहाँ पर यदि एक क्षण भर के लिए मेल हो जाएगा जिसका नाम है समाधि, तो मन भी स्वस्थ, प्राण भी स्वस्थ, शरीर भी, उसके बाद भी यदि नीचे आ जाएंगे तो कई दिन तक नशा चढ़ा रहेगा। हाँ मतलब ये है कि वो परमात्मा मेरे अंदर मौजूद है, कमी ये है उसकी शक्ति मिल रही है लेकिन हम उसकी ओर पीठ किए हुए हैं। तो इतना समझ लेना, हाँ क्या कह रहे हैं कि वो तीनों लोकों का मालिक अखंड शक्ति स्रोत परमात्मा वो उधर बैठा, ठीक है वहाँ भी है, लेकिन यदि उससे जुड़ना है, मिलना है, उससे शक्ति ग्रहण करनी है, उससे प्रेरणा लेनी है, मार्गदर्शन लेना है सीधे यदि परमात्मा से, तो हमें शरीर के अंदर जाना होगा। हाँ, ये रहस्य कह लो, पहली कह लो, साधना कह लो, सब कुछ। तो वो चर्चा हम करेंगे। अब जिसको करते वो करते, आँख खुली हुई है, इधर भागे, उधर भागे, उधर भागे, वो स्थूल स्तर पर ही क्रिया होती है। बाहर सूरत, आंखें बाहर, श्वास बाहर, हाथों की क्रिया बाहर। ठीक है, बाहर शरीर हल्का हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन कीर्तन करने में क्या होता है? आप आंख बंद करके मस्ती में देखें मेरे अंदर परमात्मा, अपने आप को देखते हुए। जब वो राम राम कह रहे थे उधर, तो उधर ध्यान नहीं जाता है। राम का मतलब परमात्मा ही होता है, गोपाल गोविंद इसका मतलब परमात्मा ही होता है ना, फलाना व्यक्ति फलाना ऐसे ऐसे तो नहीं है ना। तो मन में इतनी धारणा तो आई जाती, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये धारणा और कर ले, वो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है। और धारणा कर ले, कीर्तन करते हुए अपने अपने शरीर को देखे, मन ही मन देखे, और कर ले, आँख बंद करके कर ले, तो ये बहुत बड़ी साधना हो जाएगी, है ना। कीर्तन कर रहे हैं तो वो जो डिस्को है वो है, उससे कीर्तन इस ढंग से करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाए। तो ये साधन है, जप ध्यान का मतलब यही है। सूर्य साधना है, अग्नि साधना है। इसके साथ साथ हम और हाँ, आम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, दवाइयों का है। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो तो रोगी ही खाएगा ना। रोग होने के बाद खाएंगे, हम चाहते रोग आए नहीं, है ना। अब दवाई ऐसी है कोई खाएंगे भी पहले ही रोग ना हो, टॉनिक चाहे शायद हो, लेकिन वो पहले यदि कोई कैंसर की दवाई पहले ही खा ले कि मुझे कैंसर नहीं हो, वो बेचारा पहले रेडिएशन पहले को ले सकता है? अभी नहीं ले सकेगा। कोई अल्सर है, कोई ऐसा ऐसा है, वो दवाई हम पहले खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रकार से ऊपरी ऊपरी स्तर पर है। तो हम चाहते हैं ऐसी औषधि ली जाए कि रोग ही ना आए, कम से कम बचाव हो जाए। तो उसके लिए औषधि क्या है, खाना पीना भी औषधि है, सही मात्रा में लोगे। दवाई की परिणाम होता है ना, दवाई का जैसे होता है, एक गोली खाओगे तो ठीक है, दो गोली खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वास्ते अपने शरीर के अनुसार रोटी भी दवाई है, भोजन भी दवाई है। एक रोटी खाओगे तो ठीक है, किसी के लिए दो रोटी गड़बड़, चार रोटी खाओगे ठीक है, छह रोटी गड़बड़ हो जाएगा। तो उचित परिमाण में आहार मात्रा निश्चित जितनी हमें जरूरत है। खैर, इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, छोटी सी चर्चा। एक और सबसे बड़ी जरूरत है, अन्न के बाद जल की मात्रा आ जाती है ना। जल सफाई करता है, तो उसमें आप खूब लीजिएगा, कितना 8-10 ग्लास ले ले, कोई बात गर्मी चलेगा। तो भोजन की मात्रा सही रखें और पानी पूरा पिए। सुबह उठ के आजकल 1-2 ग्लास ले सकते हैं शौच से पहले, फिर वो क्रियाएं करें, वहाँ पर शिविर में कराते रहे भोजन वो लेके, फिर ऐसे शारीरिक क्रियाएं करें जैसे सफाई होती जाए। फिर भोजन खाने से पहले 1 घंटा कुछ ले लें, भोजन करने के बाद 1/2 घंटा 1 घंटा बाद पानी ले लें, बीच में घूट घूट लिए, तुरंत भोजन करके पानी नहीं पीजिएगा, वो अंगड़ी मंद हो जाती है। तो इस ढंग से थोड़ा तो एक नहीं बार तो थोड़ा थोड़ा ये, लेकिन इसकी भी चर्चा हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इस सबसे और भी ज्यादा महत्व की बात है श्वास। हाँ, ये ज्यादा महत्व की बात है, सबसे जरूरी है। अन्न से भी, दवाइयों से बढ़कर अन्न, अन्न से बढ़कर पानी, और पानी से भी बढ़कर क्या है, श्वास। तो उसकी चर्चा, पूरा भरा हुआ श्वास लेने की आदत डालिए। यदि पूरा भरा हुआ श्वास, अन्न से भी बढ़कर, भोजन से उससे सबके बढ़कर, यदि पूरा भरा हुआ श्वास लेने की आदत पड़ गई है तो, और बाकी सब नियंत्रित है, तो 100 साल की उम्र हो, हम प्रमाण को हमारी उम्र तो बहुत कम है अभी तो हम, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस ढंग से हम चल रहे हैं, यदि इस ढंग से चलते रहे तो शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। तो उसकी चर्चा कर लेनी है ना। हाँ, बच्चा, छोटा सा बच्चा पूरा भरा श्वास लेता है, श्वास लेने से वो अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, वो जो रास्ता अंदर का है वो खुलना शुरू हो जाता है, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है। श्वास रास्ता है, श्वास पथ है अंदर का, बाहर का भी है। गुस्सा हो तो बड़ा जोरी से बार बार श्वास आता है, 36 अंगुल, ज़्यादा भी हो जाए बाहर ही अंदर खोखला दिमाग। गुस्से में क्या था, बाहर बहुत ज़ोर से श्वास आता है और सब लोग कहते हैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गया, कुछ पता नहीं लगा तो दिमाग में कुछ होता ही नहीं, विवेक खत्म हो जाता है, सारी चेतना बाहर, आँखें लाल ऐसे ऐसे ऐसे, और दौड़े चले जा रहे, श्वास बड़ी तेजी से चल रहा है। उसको कोई भी सामान्य सा प्रश्न पूछो, हाँ क्या पूछा, खड़े होकर पूछेगा, वो चलते फिरते हो दौड़ते हुए प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते, चाहे उसको पता भी है, वो दिमाग काम नहीं करता है, बाहर को वेग है। तो वही वेग यदि श्वास का हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाए, भरा पूरा श्वास लेना शुरू हो जाए, बच्चे लेते हैं, जन्म से ही बच्चे के स्वाभाविक प्रकृति है। किसी भी बच्चे का श्वास ले लो, जब वो श्वास देख लो, श्वास जब खींचता है पूरा छाती फैलती है, पेट फैलता है, ये कि पैर के अंगूठे तक श्वास के साथ, ये मस्तक, उसने श्वास भरा तो ऐसे फैलता है, अंदर गया तो ऐसे छोड़ता है। और जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और यदि श्वास की धारा उथली 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 होनी शुरू हो जाए तो फिर शरीर अंदर से जड़ होना शुरू। आखिरी मृत्यु को किसको कहते हैं, शरीर निकारा क्या हो गया है, श्वास निकला एक और अंदर श्वास नहीं जा रहा, मृत्यु हो गई, बस इसी का ना मृत्यु है। फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाते हैं, वेंटिलेटर पर रख देते हैं, चलो वो हो गया है, आखिर में कहते हैं वो भी नहीं चल रहा, अभी छोड़ो, भी खत्म हो गया। तो श्वास पर निर्भर है, इतना गहरा श्वास इतना है, आनखाग्रे प्राण पूर्णे पश्य भक्षम च भोजनम, यदि पूरा श्वास से ऐसे ऐसे भर लें तो खाने पीने की जरूरत नहीं रहती है। अब देखो बच्चा छोटा सा है, कितना दूध पीता है, श्वास पूरा भरा इतना इतना दूध पीता होगा, और शरीर फटाफट बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है ना। अब अपने कहते हैं जी तो ज़्यादा वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाते हैं, क्या शरीर की एक लिमिट है, वो बढ़ता है उसको, ऐसा है। यदि बच्चे का बच्चा जैसा कोई श्वास ले सके और शरीर उसका पूरा बढ़ चुका है, उसको खाने पीने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अंदर ही अंदर का और विकास होता जाएगा, और विकास होता जाएगा। तो बात है श्वास पूरा भरा लेना, गलत हो गया है इसको सीखना होगा, इसके लिए नियमित अभ्यास करना होगा, फिर बताना ये अभी ठीक नहीं हुआ, फिर कोशिश करो। जैसे कोई तैरना सीखना चाहे तो किताब पढ़कर तो नहीं तैरना सीख सकता, कोई इंस्ट्रक्टर है बता देगा ऐसे ऐसे सीखो, हाँ, लेकिन बातचीत से नहीं सीख सकेंगे, दिमाग में पूरा जच गया है, पूरी उसने वो देख ली फिल्म, देख तैरना ऐसे तैरना, फिर भी नहीं सीख सकता है, कैसे सीखेगा, तालाब में गोता मारना पड़ेगा भाई। अब गोता मारने के बाद एकदम थोड़ो आ जाएगा, है ना, एकदम नहीं आएगा, फिर ऐसे हाथ मारने, ऐसे पैर मारने, ऐसे करने, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस करते 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 वो तैरना सीख जाएगा। इसी प्रकार श्वास की भी बात है, पहले समझ लें कि कहाँ कमी है, दिमाग में बैठा लें, फिर नियमित अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करते जाएँ। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में जो गड़बड़ियाँ पैदा हो गई हैं, जब मसल थोड़े तनाव जैसे हो गए हैं, बाहर जैसा हो गया है, सारे मसल्स क्या है जो और आर्टरीज वेन्स हैं, वो सारे सिस्टम जो सूक्ष्म है वो सब गड़बड़ हो जाता है, तो सबको सारे शरीर की रचना क्रम में बदलाव आ जाएगा। तो ये मत सोचे कि हमें तो जी सीख लिया कर लिया है, हाँ मुझे श्वास भरा पूरा लेना आ गया है, ये मत सोच लीजिएगा। और आगे श्वास तो ये श्वास भरा बढ़ते 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 चलो ब्रह्मरंध्र के साथ मेल हो गया, तब माने जाएंगे पूरा श्वास भरना आ गया है, एक श्वास अंदर गया समाधि लग गई तो माना जाएगा पूरा सही श्वास हुआ है। खैर जब तक कम से कम कुछ तो ठीक है। उसके लिए हम लोग शिविरों में इधर उधर जब दीक्षा होती उस समय श्वास की क्रियाओं पर खूब जोर देते हैं, ढंग से श्वास लेना सीखो। कहते कितने दिनों तक? अरे भाई श्वास तो लेने सारी उम्र लेते तो पहले समझ लें कैसे श्वास करना है, उसका अभ्यास करें। फिर इतना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बात तब तक पूरी समझ में नहीं आती है जब तक वो सही ना हो जाए, अनुभव में ना आ जाए। तो दिमाग में बैठा लिया, फिर बार बार चेक कराए, अभ्यास करते जाए। तो सीधे से एक सिद्धांत यही है, जैसे घड़ा है, घड़े में पानी भरेंगे है? जैसे हवा भरेंगे, जैसे ब्लैड ले गुब्बारा है, हवा भरेंगे तो फैलता जाएगा। किधर फैलता है वो? नीचे को फैलेगा कि ऊपर को फैलेगा, कि इधर को फैलेगा कि उधर को फैलेगा? गुब्बारे में हवा भरेंगे सब ओर को फैलता है। इसी प्रकार जब हम अंदर फेफड़ों में श्वास भरते हैं, श्वास से फिर फेफड़े हैं, फेफड़े को रक्त संचार के माध्यम से वो ऑक्सीजन ब्लड में भी जाती है, वो सारा सर्कुलेशन सारे शरीर में भी होता है, फिर वो सारे शरीर की तोड़ फोड़ श्वास के बाहर भी आती है। तो श्वास भरने का मतलब, यदि श्वास भरेंगे तो मतलब छाती से शुरू करें, छाती आगे को भी फैलनी चाहिए, पीछे को भी फैलनी चाहिए, नीचे को भी फैलनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, ऊपर भी होनी चाहिए, ऊपर भी फैलनी चाहिए। यदि छाती में पूरा श्वास भरना आ गया तो सारे शरीर में भी प्राणों का संचार होना शुरू हो जाएगा, है ना? जब श्वास भरें तो फेफड़ों से शुरू करेंगे ना, तो ऐसा श्वास भरें कि छाती आगे भी फैले, इधर भी फैले, नीचे भी फैले, ऊपर भी फैले, पीछे फैले, है ना? अब अपने श्वास कैसे भरते? ऐसे भरते थोड़ा सा तो ऊपर ऊपर को यहाँ से ही भर रहे हैं कोई, तो यहाँ तो सिकोड़ते चले, डायफ्राम होता है यहाँ, इधर से सिकोड़ते आदत पड़ गई, सिकोड़ते चले जाते हैं। इधर से हमने गुब्बारे ऊपर से पंप मारा और नीचे से बंद कर दिया, जगह ही हम स्पेस अपने वैसे ही कम करते चले, तो कहाँ पूरा श्वास क्या है? हैराने की बात है। अभी फेफड़ों में जितनी जितना वो कैपेसिटी है 10% यूज़ होते हैं आमतौर पे, बस अंदर ही पड़ा रहा, थोड़ा निकाला भरा, थोड़ा निकाला भरा, ऐसे करते रहते हैं। तो ये श्वास विज्ञान, इसी का नाम प्राणायाम है, प्राण शक्ति परमेश्वरी है। तो इस पर इसके महत्व को कम नहीं आ, और दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भाग दौड़ करते हैं तो खूब जोर से श्वास चलता है और वेग बाहर को होता है। ठीक है, बाहर को भी करें लेकिन उतना ही अंदर को भी करें तो भस्त्रिका प्राणायाम बन जाएगा। हैं? भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें बड़ी जल्दी से लेते हैं लेकिन उसमें वेग अंदर भी होता है, यही विशेष बात है। और दौड़ में क्या, तो बार ही बार, बार ही बार, इसी बात से जो ऐसे एथलीट हैं बार, उनकी उम्रें ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, और जो भाग दौड़ से होते टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जोड़ों के दर्द, वो क्योंकि वो भर ही रहे हैं और तोड़ फोड़ को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तेजी धोखनी धोखनी, गहरा नहीं है, अंदर नहीं है। जितना भरे उतना निकाले, जितना भरे उतना निकाले, इस ढंग से हो फिर तो ठीक है। खैर, कहने का मतलब ये है, वर्जिश करें, व्यायाम करें, वो करें, सब कुछ करें, साथ में कीर्तन भी करें, खूब बढ़िया है, मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन इसको मत भूलें, श्वास की क्रियाओं को। ये शरीर की स्वस्थता के लिए नहीं है, ये पूरा ध्यान साधना का अंग है। इसके द्वारा अंदर का रास्ता निर्मित होता है, अंदर के चैनल्स खुलते हैं, और अंदर जो बैठा परमेश्वर हमारे मस्तक में ऐसे ऐसे है, उसके साथ मेल मिलाप होना शुरू हो जाता है। तो क्रियाएं तो भी बहुत लोगों को पता है, पहला पूरा वो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है, लेकिन इसके महत्व को भी स्वीकार कर लें। श्वास की क्रिया हम लोग करवाते हैं ऐसे, इधर हाथ रख के पूरा भरो, हाथों के पूरा श्वास भरो। तो इसमें थोड़ा सा बस इतना अभी यही कर दें, थोड़ा सा ही करें, सूत्र दे देते हैं, आपको पता लगे आप श्वास भर रहे हैं, आपको पता लगे श्वास छोड़ रहे हैं, बस एक पहला सूत्र है। जब श्वास आप देखिएगा, श्वास भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, छोड़, ये आपको पता लगे। दूसरी बात, श्वास भरने और छोड़ने का बीच का समय जीरो होना चाहिए, रुकना नहीं है। अनजाने रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं? अंदर जड़ता है, पता नहीं कहाँ श्वास, छोटा सा सूत्र है लेकिन इसको समझ लीजिएगा। यदि श्वास भर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, बीच में थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और थोड़ी देर के रुक रहा है, वो रोग के कारण है, बहिर्मुखता के कारण है। छोटा सा सूत्र है, इसको पकड़ लें। लंबा है छोटा छोड़ दिए, श्वास भरा साथ ही छोड़ना शुरू कर दिया थोड़ा। हाँ प्राणायाम अलग चीज है, प्राणायाम बिल्कुल अलग चीज है, वो तो पाए तो बिल्कुल इंटेंशनली रोकते हैं, लेकिन प्राणायाम में भी हम फिर रोक के उसको गति देते हैं, रोक के अंदर ही गति दे, इधर ले जाना उधर ले जाना, लेकिन श्वास पूरा सही तो पहले हो, छाती पूरी आगे फैले पीछे फैले वो फैले वो फैले, नॉर्मली श्वास ले रहे पूरा ले रहे हैं, बीच में थोड़े रुकते हैं है ना, जब श्वास भरा तकरीबन रुकना पड़ता है आम व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो समय कम से कम होना चाहिए, पहले श्वास पूरा भरा फिर रुकिएगा बंद लगा कर, वो बंद लगा लगती है, लेकिन पहले पूरा भरा हुआ श्वास आना चाहिए। तो एक बात है, पता लगे श्वास भर रहे हैं, पता लगे या श्वास छोड़ रहे हैं, अब जब पता नहीं लग रहा तो वर्जिश हो रही है, जब दौड़ते हैं ना तो पता ही नहीं लग रहा श्वास का भर रहे छोड़ रहे, वो तो धोख नहीं चलती है, वर्जिश में और ये श्वास की क्रिया में ये अंतर है। बहुत तेजी से दौड़े जा रहे बड़ी तेजी से श्वास चलता है, लेकिन उसको पता नहीं लगा भर रहे के छोड़ रहे हैं, तो पता लगे भर रहे हैं पता लगे छोड़ रहे हैं तो श्वास की क्रिया हो जाएगी, प्राणायाम का अंग हो जाएगा और बीच का समय जीरो हो जाएगा, इतना ही यदि कर ले। और दूसरी बात है वो क्रियाएं फिर है, हाथ रख के छाती भरे पूरा, छाती आगे भी फैले इधर साइडों में फैले पीछे नीचे ऊपर से रहा है, फिर उसके बाद मोटा मोटा भी तकरीबन हमारे बहुत से परिचित हैं जिनको पता ही है, इतना थोड़ा सा रख लें ध्यान, फिर दोहरा देते हैं, जब हम श्वास भरें छाती से तो हाँ पेट अंदर की ओर नहीं धंसना चाहिए, ये छोटी सी बात है, श्वास भरते हैं ना ऐसे पेट अंदर जाता है तो नहीं, पेट अंदर नहीं जाना चाहिए, ये पेट अंदर जाएगा तो डायफ्राम ऊपर को सिकुड़ना, फेफड़ों की स्पेस कम हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे स्वस्थ रख, पेट को फैलाने वाली चीज है, जब हम श्वास भरेंगे पूरा नीचे को तो डायफ्राम फैलेगा तो पेट अपने आप हल्का सा बाहर आएगा ही आएगा, करना नहीं है। तो ये तीन बातें यहाँ पे याद कर लीजिए, कौन सी बात, पता लगे भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, बीच का समय जीरो हो, और जब छाती से श्वास भर रहे हैं तो सारा शरीर फैले कम से कम पेट अंदर की तरफ नहीं जाए, इसके लिए आप नियमित अभ्यास करें, ये श्वास बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये नहीं कहो भी रोग, क्योंकि जब रोग नीचे हो जाता ही नहीं है, अब इधर फैल गया ना इधर फैल गया, नीचे तक वो सिकुड़ा ही रहता है, जाता ही नहीं है श्वास, नीचे तक पूरा श्वास भरते हुए इधर नीचे क्रियाशील होंगे अब हो ही नहीं सकती है, यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब श्वास गड़बड़ है, और वो तो फिर आगे बातें हैं, श्वास भर के ऐसे रोग को इधर ले जाओ घुटने का रोग, ये विज्ञान है पूरा, जहां पर भी यदि वो टेक्निक आ गई श्वास भरो संकल्प के द्वारा इधर ले जाओ उधर ले जाओ सारा रोग दूर हो जाएगा वहां पर, खैर वो बातें धीरे धीरे वो भी बिल्कुल संभव है, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा श्वास पूरा भरा आना चाहिए, इसके लिए समझ लीजिए गलती कहाँ पर हम कर रहे हैं, पता तो लगे ना, फिर सही तरीका समझिएगा, फिर नियमित अभ्यास करिएगा रोजाना करिएगा, ठीक है नहीं, हाँ इतने काफी है, तो फिर ओम का उच्चारण कर लेते हैं, इसमें कोई पूछना तो कोई आप दो, हाँ हाँ ठीक है, एक संजीवनी क्रिया है कोई किताब इसमें जो,